नमस्कार भारत, 12 मई रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। छठे चरण का मतदान आज, 59 सीटों पर जनता करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक 5 सितारा होटल पर चरमपंथी हमला, एक की मौत।
ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से, जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है इस हमले की।
सुनवाएंगे अलवर गैंगरेप घटना के पीड़ितों की दास्तां।
26 तारीख की 3:15 बजे का टाइम था, हम जा रहे थे तो दो बाइक पर 5 सवार लोग आए, बाइक आगे लगा के और हमारे को मारपीट करने लगे, नीचे लेके चले गए टीलों में रेत में।
होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से साथ मिलकर काम करने की अपील की है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए रूहानी ने मुश्किल वक्त के बारे में चेताते हुए कहा कि ईरान 1980 के दशक से भी ज्यादा दबाव में हो सकता है। उस समय इराक से युद्ध के दौरान भी ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे। रूहानी ने याद दिलाया कि उस समय ईरान पर सिर्फ हथियार खरीदने पर प्रतिबंध थे और वो व्यापार और बैंक लेन देन कर सकता था। ईरान पर अमेरिका के मौजूदा प्रतिबंधों ने उसके तेल निर्यात को लगभग खत्म कर दिया है और विदेशी निवेश और व्यापार को रोक दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चुनावों में अपनी पार्टी की जीत के बाद नई शुरुआत करने का वादा किया है। बुधवार को हुए चुनावों के अंतिम नतीजों में सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 57% मत हासिल हुए हैं। रामाफोसा ने स्वीकार किया कि कई लोगों ने राजनीति में भरोसा खो दिया है, अधिकतर युवा मतदाताओं ने अपना पंजीयन तक नहीं कराया है। संवाददाताओं का कहना है कि पार्टी की वोटों में 5% तक की गिरावट की वजह बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई न करना हो सकता है। रामाफोसा ने माना कि युवाओं का राजनीति से भरोसा उठ रहा है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा,
I was encouraged to observe the hive of activity.
मुझे सोशल मीडिया, जहां युवा अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं और वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं पर गौर करने के लिए कहा गया था। हमें खुश होना चाहिए कि बहुत से युवा देश के बारे में रुचि ले रहे हैं, लेकिन हमें यह कहना होगा कि इस रुचि को और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से युवा अभी भी मतदान नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मतदान में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। सऊदी अरब की पुलिस का कहना है कि देश के उत्तरी कातिफ क्षेत्र में एक चरमपंथी सेल से जुड़े 8 लोगों को मारा गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक ये समूह देश के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रच रहा था। प्रवक्ता के मुताबिक पुलिस पर गोली चलाने के बाद इन लोगों को मार दिया गया। पुलिस बलों ने तारोत द्वीप पर एक घर की घेराबंदी की थी। देश के इस इलाके में अल्पसंख्यक सिया समुदाय के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में कई सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। शिया लोग देश की सुन्नी बहुल सरकार पर भेदभाव के आरोप भी लगाते रहे हैं। यमन में हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो हुदैदा समेत 3 तटीय बंदरगाह इलाकों से पीछे हट रहे हैं। ये देश में मानवीय मदद लाने के लिए बेहद अहम इलाके हैं। हालांकि यमनी सरकार ने इसे यमन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले गुमराह करने की कोशिश बताया है। विद्रोहियों ने कहा है कि वो हुदैदा समेत 2 नज़दीकी बंदरगाहों से पीछे हट जाएंगे। संवाददाताओं का कहना है कि यदि हूती यहां से पीछे हट जाते हैं तो देश में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद लाना आसान हो जाएगा। वहीं हूती विद्रोहियों के इस कदम को लेकर शक भी जाहिर किया जा रहा है। इलाके में सक्रिय स्वतंत्र पत्रकार इयोना क्रेग मानती हैं कि शक करने की जायज वजह है। उन्होंने कहा, मैंने जिन बहुत से यमनी लोगों से बात की है, वो हूतियों के पीछे हटने को लेकर आशंकित हैं और उनकी आशंकाओं की जायज वजहें भी हैं, क्योंकि जब बीते साल दिसंबर में हुदैदा में संघर्ष विराम प्रभावी हो गया था, तब हूतियों ने कहा था कि उन्होंने बंदरगाह को तटरक्षकों को सौंप दिया है। बाद में पता चला कि ये तटरक्षक उनके अपने वफादार लोग ही थे। अफगानिस्तान में एक पूर्व महिला टीवी पत्रकार की हत्या कर दी गई है। मीना मनगल अफगान संसद की सांस्कृतिक सलाहकार थीं। काम पर जाने के दौरान उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। लोकसभा चुनाव लगभग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आज छठे चरण का मतदान होना है। इस दौरान 59 सीटों पर जनता वोट डालेगी। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार की 8-8, दिल्ली की 7 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी नितिन, बताएं, वैसे तो आज वाराणसी में चुनाव नहीं है, लेकिन यूपी में कैसी तैयारियां हैं चुनावों की?
यूपी में जिन आज 14 सीटों पर मतदान होना है, शायद उसमें 13 सीटें जो थी वो 2014 में बीजेपी के खाते में गई थी। इस लिहाज से ये जो छठे चरण का मतदान है 14 सीटों पर, मोस्टली पूर्वांचल के एरियाज में बहुत अहम है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी है, प्रतापगढ़ से रत्ना सिंह कांग्रेस की हैं, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी इस बार बीजेपी की उससे लड़ रही हैं, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल है, भदोई और ऑफकोर्स आजमगढ़ जो है जहां से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो इसलिए अगर ऑपोजिशन को इन 14 सीटों में वाकई में अपना दमखम दिखाना है या एक कमबैक करना है, उस लिहाज से ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 2.5 करोड़ मतदाता जो है आज अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं।
जी नितिन, आप आजमगढ़ भी रहे और आपने जिस तरीके से अभी कहा कि इन 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीती थी। एक सीट इकलौती आजमगढ़ की थी जिसे पिछली दफ़े मुलायम सिंह यादव ने जीता था और इस बार वहां से उनके सुपुत्र अखिलेश यादव हैं। तो आप आजमगढ़ का दौरा करते रहे, कैसे वहां मुद्दे रहे और किस तरीके का आपने चुनाव प्रचार देखा हाल फिलहाल में?
देखिए, दो तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि केंद्र में नेता कौन हो, यानी लोग प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं। दूसरे स्तर पर एक बात जो साफ तौर पर समझ में आती है वो ये है कि लोग जो अपने स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव थे, एमपी थे या एमएलए थे, उनको लेकर नाराजगी है लोगों में। लोग विकास की बात करते हैं, कहते हैं साहब बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चीजें बदल रही हैं और 5 साल कम है, तो राय बटी हुई है। एक बात जो एकदम साफ तौर पर समझ में आती है कि इस चुनाव में शायद जो मतदाता है वो बहुत साइलेंट है, बहुत खामोश है और हर बार की तरह वो उतना वोकल नहीं है, उतना जोर शोर से आगे आकर नहीं बोल रहा है कि वो क्या करने वाला है। तो वाकई में 23 मई जो होने वाली है बहुत दिलचस्प होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव इतनी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, यूपी के बाद चलते हैं एमपी। मध्य प्रदेश में आज 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें भोपाल की सीट भी शामिल है जो हाल में खासी सुर्खियों में रही है। टेलीफोन लाइन पर इस समय भोपाल से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जुड़ चुके हैं। जी सलमान, बताएं कि आज कहां कहां मतदान होना है और अभी आप भोपाल में ही हैं, शायद बाहर निकल चुके हैं आप पोलिंग बूथ पर।
जी, सबसे पहले तो अगर जो लोग कई चरणों के मतदान को लेकर बड़े तनाव में हैं, तो मैं बताऊं कि मैं भोपाल के 4 बत्ती चौराहे से बोल रहा हूँ और हाँ, यहाँ टक्कर काटे की है।
तो हमें बताएं कि
काटे की टक्कर जी ये है, क्योंकि सारी सबकी नजर इस सीट पर है
जी।
यहाँ पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला साध्वी प्रज्ञा से है और सारे लोग इस सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई साल के बाद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 16 साल के बाद, और अचानक उनका मुकाबला होता है साध्वी प्रज्ञा से। तो चूंकि ये 1989 से ही सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है और यहाँ मुकाबले की बात तो नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार जो है ये मुकाबला बहुत टक्कर का है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है जो यहाँ मौजूद थे। सुबह सुबह तैयारियां हैं काफी और काफी जोश है वोट डालने का। उसी तरह से नजर सबकी दूसरी सीट है गुना की, जिसपे सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है आजादी के बाद से लेकर अब तक, और वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के आदमी को केपी यादव को टिकट दिया है वहां से। और विदिशा, जैसे आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज सब लड़ चुके हैं उस सीट से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के रामाकांत भार्गव को टिकट दिया है और वहां से शैलेंद्र पटेल चुनाव लड़े। तो इन 3 सीटों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सीटें रही हैं अलग अलग परिवारों की, अलग अलग पार्टियों की। तो मुकाबला इन 3 सीटों पर काफी रोचक रहेगा। वैसे तो 8 सीटों पर हो रहा है, मुरैना, ग्वालियर, सागर, राजगढ़, भिंड तो ये सब भी हैं जिन पर है, लेकिन नजरें इन तीन सीटों पर ज्यादा है लोगों की।
चलिए सलमान साहब, आप अपना ध्यान भोपाल की सीटों पर बनाए रखें, भोपाल पर बनाए रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया भोपाली अंदाज में आपको भी। बढ़ते हैं आगे, अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां की कुल चार लोकसभा सीटों कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला पर आखिरी चरण में यानी 19 मई को मतदान होगा। शिमला हिमाचल की राजधानी भी है, ऐसे में लोग इस पहाड़ी राज्य के अलग अलग हिस्सों से यहां काम के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में सैलानी भी यहां पहुंचते हैं। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़ ने शिमला में लोगों से बात की और उनका चुनावी मिजाज टटोलना चाहा।
मेरा नाम राजन शर्मा है, मैं शिमला का रहने वाला हूँ। यहाँ के जो हिमाचल के मुद्दे हैं वो पूरे देश से अलग हैं, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी सी हटके है। अभी चल रही है चर्चा, जहाँ भी चल रही है तो वो या तो फौज के बारे में चल रही है या फिर हमारे हिंदू मुस्लिम के बारे में चल रही है। उसको हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ रोजगार चाहिए, और रोजगार बढ़ाने के लिए दो चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए, एक टूरिज्म इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पर, तो हमारे को काफ़ी यहाँ पर काम मिल सकता
है। मैं भी इनके वास्ते सहमत करता हूँ कि आज की डेट में जो युवा है वो रोजगार चाहता है, एजुकेशन यहाँ पे हिमाचल में ले रहा है, पर लेने के बाद उसको जो कंटेंट यहाँ पे एजुकेशन के बाद जो जॉब चाहिए वो नहीं मिल रही, उस चीज़ के लिए उसको बाहर वाले राज्यों में जाना पड़ रहा है।
जब 2014 की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे उठा रहे थे, वो कर रहे थे कनेक्टिविटी की बात, उन्होंने ये बात उठाई कि यहाँ पे सड़क हादसे होते हैं तो इसके लिए बढ़िया तरीका ये होगा कि यहाँ पे एक मजबूत रेल नेटवर्क हो।
कनेक्टिविटी में जीरो है, जीरो काम हुआ है यहाँ पे। एक तो हमारी परिस्थितियाँ विशेष है, क्षेत्र बड़ा टफ है, और एक स्पेशल बजट आना चाहिए, स्पेशल कैटेगराइज होनी चाहिए हमारी स्टेट, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न लेवल पे स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, हट के पैसा आना चाहिए। इस विषय पर सरकार सोचे, हमारी सरकार फरियाद करे सेंटर से, इन अर्थों में ले जाए ताकि हमको कोई ज़्यादा आर्थिक सहायता मिल सके।
मुद्दे तो कोई भी नहीं उठा रहा है, असल में मुद्दे है, मुद्दे तो विपक्ष वालों से सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी हटाओ, बाकी तो उनका कोई मुद्दा नहीं है।
और
सत्ता पक्ष अपना काम बता रहा है कि हमने काम,
जो पांच साल की उपलब्धियां क्या उनकी बात हो रही है,
वो कर रहा सत्ता पक्ष बात।
लेकिन इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, उनको जो अपनी उपलब्धियां जो बतानी चाहिए थी उसके बजाय उनका फोकस ज्यादा जो पुलवामा पे हमला हुआ, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उस पर ज्यादा फोकस हो गया है।
वो तो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनके काम जो है काम बताना चाहिए, बता भी रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है। पानी की समस्या जो है थोड़ी बहुत हल हुई है, बाकी तो वैसे का वैसा ही है।
तो क्या आपके मुद्दे हैं, किन क्या सोचा है आपने कि मैं इन इश्यूज़ पे वोट दूंगा?
सर हमारे लिए तो अभी रोजगार ही है सबसे बड़ा इशू, बाकी देखते हैं।
तो अभी आप जो देख रहे हैं चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या रोजगार पे कोई बात कर रहा है?
रोजगार पे मोदी सरकार तो वैसे थोड़ी कम ही ध्यान दे रही है, बाकी हमारे यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट थी कांग्रेस, वो तो सेटिस्फाइड है मतलब उससे। तो
इस बार जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें भाषा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं।
एटलीस्ट 80 के बाद तो हमें भी बिल्कुल एक्टिवली हमें पता है कि भाई किस तरह से चुनाव प्रचार होता था, सारी की सारी हदें पार कर चुके हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो सत्ताधारी पक्ष होता है, जिसे डेमोक्रेसी में वैल्यूज़ स्थापित करनी होती है।
शिमला में लोगों से चुनावी रुझान जान रहे थे हमारे सहयोगी आदर्श राठौर।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर शहर के इकलौते 5 सितारा होटल में कल शाम 3 बंदूकधारियों ने हमला बोल दिया। अधिकारियों ने इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी के मारे जाने की पुष्टि की है, साथ ही 3 बंदूकधारी भी मारे गए हैं। जेवर पल कॉन्टिनेंटल होटल के प्रवक्ता ने कहा कि रमजान मक्के महीना होने के कारण होटल में कोई नहीं ठहरा था, सिर्फ कुछ स्टाफ वहां मौजूद था। इस हमले के पीछे क्या मकसद है और किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी सिंधु वासिनी ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से बात की।
ये एक मिलिटेंट बलूच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से, जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है इस हमले की। और ये BLA के स्पोक्समैन हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये मजीद ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने PC होटल में घुस के हमला किया है, और वहाँ पे उनके बकौल उनका मानना है या उनका कहना है कि वहाँ पे कुछ जो चाइनीज जो थे वो इन्वेस्टर्स मौजूद थे। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो होटल है PC होटल, ये एक ही गवादर में 5-स्टार होटल है और बहुत से लोग खासतौर पे जब भी वो इंटरनेशनल, चाहे कोई इन्वेस्टर्स हों या टूरिस्ट हों या इवन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हों, हम खुद भी इस होटल में ठहरते रहे हैं। तो ये एक ही इलाके में होटल है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है ये पहली ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से कह सकते हैं आप, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचों की, और इससे पहले भी उन्होंने बलूचिस्तान का एक इलाका है दालबंदीन जहाँ पे चीनी इंजीनियर्स की बस पे सुसाइड अटैक किया था। इसके बाद कुछ महीने पहले कराची में एक चाइना का काउंसुलेट है उसके ऊपर भी हमला किया गया था। तो देखा जाए तो ये पिछले कुछ ही महीनों में इस ऑर्गेनाइजेशन का बलूचिस्तान में तीसरा बड़ा हमला है।
और ये हमले करके ये आर्मी क्या संदेश देना चाहती है, क्या जताना चाहती है?
देखिए, उनका यही कहना है कि बलूचिस्तान की जो है वो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चाइना कब्जा करने जा रहा है। चाइना जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और जो गवादर है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस कॉरिडोर का। ये कॉरिडोर शुरू गवादर से होता है और फिर ये पूरे पाकिस्तान से गुजरते हुए चाइना के साथ ये लिंक करता है जाके। तो उनका इस पे बहुत एतराजात हैं। इसके अलावा वो जो है एक तरह से देखा जाए तो एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलहदगी के लिए जो है वो एक तरह से कोशिश कर रही है या मूवमेंट चलाए हुए है, और उनके कई जो है वो ग्रीवियंसेस हैं। और उनका यही कहना है कि जो बलोच हैं उनको उनके रिसोर्सेज के मुताबिक उनका हक नहीं मिल रहा है और उनके साथ ज्यादती की गई है।
अगर हम ग्वादर की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में देखें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है?
देखिए, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि ये एक बहुत अहम पोर्ट है और ये हुर्मुज, आप नाए हुर्मुज के बिल्कुल करीब है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है और ये चाइना को एक बहुत ज्यादा एक्सेस देगा पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट, और जो उनकी वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रेटेजिक जो पोजिशन है इसकी। और चाइना के साथ पाकिस्तान की कोलेबोरेशन है, यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाइनीज की बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस है। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी एक तरफ से सरहद जो है वो ईरान के साथ भी मिलती है। इसी गवादर में सऊदी अरब ने भी एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो है वो ऐलान किया है, पाकिस्तान के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो एक तरह से ईरान जो है उसके सऊदी अरब के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो काफी अनकंफर्टेबल है। तो इस एरिया के अंदर सऊदी अरब की एक तरह से प्रेजेंस जो है वो ईरान को परेशान कर सकती है। तो ये एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल, जो कह सकते हैं आप की प्लेयर्स हैं रीजनल और इंटरनेशनल, उनका बहुत सा इंटरेस्ट जो है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है।
ग्वादर के 5-सितारा होटल में चरमपंथी हमला, अधिक जानकारी दे रही थी शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान में इस हफ्ते बढ़ती महंगाई, दाता दरबार दरगाह में चरमपंथी हमला और नवाज शरीफ की जमानत की अवधि समाप्त होने से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं इनको लेकर वहां के अखबारों ने क्या क्या लिखा। ये उर्दू अखबारों की समीक्षा बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने तैयार की है और इसे अपनी आवाज दी है हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी ने।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्हें बढ़ती महंगाई का एहसास है लेकिन कर्ज उतारने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार रावलपिंडी में एक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए इमरान खान ने कहा, हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम और कर्ज बढ़ने दें या फिर हम कीमतें बढ़ाएं, कर्जों की बीमारी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम जब सरकार में आए तो 1300 अरब रुपये का कर्ज विरासत में मिला, कर्ज उतारने के लिए आमदनी में इजाफा और खर्च में कमी करनी पड़ती है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है और रोजमर्रा की जरूरी चीजें काफी महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान को आर्थिक तंगी से निकालने के लिए IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज की बात चल रही है। एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान और IMF के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर समझौता हो गया है। अखबार लिखता है कि 3 साल के प्रोग्राम के तहत IMF पाकिस्तान को किस्तों में $8 अरब की रकम देगा। अखबार के अनुसार समझौते के तहत पाकिस्तान करीब 750 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगा। समझौते की शर्तों के अनुसार तमाम क्षेत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और घाटे में चल रही कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अखबार नवाए वक्त के मुताबिक IMF से बातचीत अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई है और 2 दिन और बातचीत होगी। अखबार के अनुसार इमरान खान ने अपनी टीम से कहा है कि IMF से अपनी शर्तों को थोड़ा और नर्म करने के लिए कहा जाए। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बना रही हैं और इमरान खान सरकार की आलोचना कर रही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी संसद में सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इमरान खान की सरकार पीटीआई नहीं बल्कि पीटीआई एमएफ की सरकार है। बिलावल ने कहा कि आईएमएफ ने वित्त मंत्रालय, एफबीआर और स्टेट बैंक पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इमरान खान पर हमला बोलते हुए कहा, गरीबों का आर्थिक कत्ल हो रहा है, ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। ये तो वही पुराना जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ वाला पाकिस्तान है। लाहौर की मशहूर सूफी दरगाह दाता दरबार के बाहर हुए चरमपंथी हमले का जिक्र भी सारे अखबारों में है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार इस हमले के एक और जख्मी की शुक्रवार को मौत हो गई। इस तरह इस हमले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। अखबार के अनुसार पुलिस ने शक की बुनियाद पर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन उनकी खराब सेहत को देखते हुए अदालत ने उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दे दी थी। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार इसी हफ्ते उनकी जमानत की मुद्दत खत्म हुई और उन्होंने जेल अधिकारियों के सामने खुद को पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने निवास स्थान से जेल तक का सफर एक रैली की में तय किया। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज गुट के हजारों समर्थक भी उस जुलूस में शामिल हुए। जेल जाने से पहले नवाज शरीफ ने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते हुए कहा, जुल्म की ये रात खत्म होगी और काल कोठरी से मुझे निजात मिलेगी। मेरे कार्यकर्ता जानते हैं कि मुझे किस गुनाह की सजा दी जा रही है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा आपने सुनी गुरप्रीत सैनी से, जिसे तैयार किया था इकबाल अहमद ने। अब जान लेते हैं दिल्ली के अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा जी। दिलनवाज क्या
जी,
कह रहे हैं?
शाहिद, आज दिल्ली समेत देश की 59 सीटों पर मतदान है।
जिस तरीके से हमने अभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में सुना, तो आज जाहिर सी बात है अखबारों में दिल्ली
जी बिल्कुल। अमर उजाला लिखता है आज बड़ा दिन, दिल्ली डालेगी वोट। वहीं एनबीटी ने लिखा है, इसे पढ़ें और चल पड़े वोट डालने। और पहले पेज पर दिल्ली में आज उम्मीदवारी पेश कर रहे सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी है, बताया है वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कहां तक।
ये नवभारत टाइम्स बता रहा है
जी, पहला पन्ना इसी को समर्पित किया है।
7 सीटें हैं दिलनवाज, और बहुत रोचक मुकाबला है उत्तर पूर्वी दिल्ली से जहां शीला दीक्षित हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर हैं, वहीं दक्षिणी दिल्ली से मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हैं,
अतिशी मरलेना भी हैं जिन्होंने काफी चर्चा हासिल की है आम आदमी पार्टी की
गौतम गंभीर के खिलाफ
जी।
इसी के अलावा हंसराज हंस हैं
जी बिल्कुल, उन्हें लेकर भी कई विवाद आए हैं। और मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू 2 पन्नों पर बड़ा बड़ा छापा है और शीर्षक दिया है, मोदी जी ने कहा है कि मेरी जो छवि है उसे खान मार्केट के गैंग ने नहीं तैयार किया है बल्कि मेरी 45 साल की तपस्या का नतीजा है।
और खान मार्केट का गैंग से क्या मतलब है दिलनवाज
जी? इलीट पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो मोदी का अपना एक स्टाइल है बात करने का। तो ये विस्तृत साक्षात्कार है, ज्यादा डिटेल हम अभी नहीं दे पाएंगे
है
जी बिल्कुल, समय कम है, लेकिन 3 पन्नों में प्रकाशित है साक्षात्कार। और अभी दैनिक भास्कर मेरे हाथ में है, अखबार ने आज अपने आप को लिखा है माँ भास्कर, आज मदर्स डे भी है और उसी से जुड़ी कहानियां प्रकाशित की हैं। इसके अलावा एक और खबर है, रिटायर्ड हो चुके पोत विराट पर हर माह 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इसकी सुरक्षा में 209 सैनिक तैनात हैं। और ये अखबार आज का बता रहा है कि विराट विवादों में है मोदी जी के ही एक बयान को लेकर जी बिल्कुल,
और उसकी सुरक्षा में जबकि वो रिटायर हो चुका है।
हाँ, 2 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च हो रहे हैं। मेरे हाथ में द हिंदू है और पहले पन्ने पर टॉप पर एक विशेष खबर प्रकाशित है, असम से कहानी है राहत अली की, जो 3 साल तक बांग्लादेशी की तरह जेल में रहे और अब भारतीय बनकर आज़ाद हुए हैं।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलनवाज पाशा। बात राजस्थान की, जहां अलवर के पास एक गांव में 5 युवकों ने एक लड़की के साथ उसके पति के सामने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। अभियुक्तों ने घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। BBC संवाददाता सिंधु वासनी ने अलवर जाकर पीड़ित महिला और उसके पति से बात की, उनका क्या कहना है सुनिए इस रिपोर्ट में।
राजस्थान में अलवर से सटे एक गांव में दिन जैसे जैसे चढ़ता है धूप बेरहम होती जाती है। गांव के घर के सामने दरवाजे पर सफेद पगड़ी बांधे पुरुषों की भीड़ जमा है, कुछ गाड़ियां और पुलिस कर्मी भी दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा बच्चा दौड़ दौड़ कर सबको पानी पिला रहा है। बरामदे में 10-15 औरतें बैठी हैं, इनमें से कई घूंघट में हैं और घूंघट ओढ़े ही चिलम पी रही हैं। ये 18 साल की उस लड़की का घर है जिसके पति के सामने उसके साथ कथित तौर पर 5 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दलित परिवार की इस लड़की के साथ ये जघन्य अपराध 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसके बाद एक हफ्ते तक पुलिस और प्रशासन हरकत में नहीं आया। हालांकि मीडिया में आने के बाद अब पुलिस ने वीडियो बनाने वाले समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पति उस दिन की आप बीती सुनाते हुए कहते हैं,
26 तारीख थी, 3:15 बजे का टाइम था। हम जा रहे थे तो 2 बाइक पर 5 सवार लोग आए, बाइक आगे लगा के और हमारे को मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने लगे, बाद में नीचे लेके चले गए टीलों में, रेत में, और रेत की टीलों में ले जाके वहाँ पे उधर भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, वीडियो बनाने लग गए। आसपास कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे सुनसान है एकदम।
ये थे पीड़िता के पति के शब्द। वहीं अमूमन कम बोलने वाली पीड़िता इस घटना के बाद और कम बोलने लगी हैं। उनका कहना है कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं।
मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आज अभी तो मेरे साथ हुआ है, करना और कोई के साथ हुआ, इसलिए उनको सजा देनी जरूरी है, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त, बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अलवर में 6 मई को होने वाले चुनाव का हवाला देते हुए कार्रवाई में देरी की, लेकिन मामले की जांच कर रहे अलवर ग्रामीण के डिप्टी एसपी जगमोहन शर्मा ने पुलिस पर ढिलाई के आरोपों से इनकार किया।
ये केस रजिस्टर हुआ है 2 मई को, उसके बाद हमने जो पीड़िता है उसके स्टेटमेंट वगैरह लिए हैं और उसका मेडिकल करवाया है, उसके जो भी क्लॉथ वगैरह हैं वो हमने सीज किए हैं, और उसके बाद जो एक्यूज थे जो उन्होंने 5, उसमें FIR में उन्होंने 2 बताए थे, तो उन 2 को के आधार पर फिर हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और उन मुलजिमों का पता लगाया।
वहीं जगमोहन शर्मा ने ये जरूर स्वीकार किया कि चाहे चुनावी माहौल हो या आम दिन, पुलिस कर्मियों की सीमित संख्या की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। अलवर गैंगरेप मामले को लेकर अब राजनीति तेज है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता खोने वाली बीजेपी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए सत्ताधारी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है। वहीं पीड़िता के परिवार का कहना है कि राजनीति के चक्कर में उनकी इंसाफ की मांग को न भुलाया जाए। सिंधुवासिनी BBC अलवर।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL 12 का चैंपियन कौन बनेगा, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस, इसका फैसला आज हैदराबाद में खेले जाने वाले फाइनल के बाद हो जाएगा। दोनों टीमें 3-3 बार चैंपियन रह चुकी है, लेकिन चेन्नई के सामने खिताब बचाने की चुनौती है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही चेन्नई 8वीं बार फाइनल में पहुंची है, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही मुंबई भी 5वीं बार फाइनल में पहुंची है। मुंबई इंडियंस ने इस बार IPL में लीग चरण में दोनों मैचों में चेन्नई को मात दी, तो पहले क्वालिफायर में भी उसे हार का स्वाद चखाया। चेन्नई का भार कप्तान धोनी, शेन वाटसन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और इमरान ताहिर पर होगा, तो मुंबई इंडियंस कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, सूर्य कुमार यादव, लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह के दम पर मैदान में उतरेगी। वहीं IPL की धूम के बीच वुमेन्स 2020 चैलेंज का खिताब कल सुपरनोवा ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर अपने नाम किया। सुपरनोवा के सामने जीत के लिए 122 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 51 रन की मदद से अंतिम गेंद पर 6 विकेट खोकर हासिल किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर वेलोसिटी ने सुषमा वर्मा के नाबाद 40 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 121 रन बनाए थे।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से साथ मिलकर काम करने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चुनावों में अपनी पार्टी की जीत के बाद नई शुरुआत करने का वादा किया है। सऊदी अरब की पुलिस का कहना है कि देश के उत्तरी कातिफ क्षेत्र में एक चरमपंथी सेल से जुड़े 8 लोगों को मारा गया है। यमन में हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो हुदैदा समेत 3 तटीय बंदरगाह इलाकों से पीछे हट रहे हैं। यमनी सरकार ने उनके इरादों पर शक जाहिर किया है। अफगानिस्तान में एक पूर्व महिला टीवी पत्रकार की हत्या कर दी गई है। मीना मंगल अफगान संसद की सांस्कृतिक सलाहकार थीं। ब्राजील में बीते महीने एक कार पर गोलीबारी करने वाले 12 सैनिकों के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। रियो दे जेनेरियो में हुई इस घटना में 2 लोग मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।